एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
और आज हम एक बहुत ही जबरदस्त किताब पर बात करने वाले हैं। ऐसी किताब जिसने न सिर्फ विज्ञान बल्कि हमारे सोचने के तरीके को भी मतलब गहराई से बदला है।
हाँ, थॉमस कून की द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रेवोल्यूशंस, हिंदी में कहें तो वैज्ञानिक क्रांतियों की संरचना।
बिल्कुल, ये किताब आई तो थी 1962 में, पर इसका असर देखिए आज भी कितना ज्यादा है।
सही बात है, ये उस आम सोच को सीधी चुनौती देती है कि विज्ञान बस एक सीधी लाइन में आगे बढ़ता है, जैसे बस हम ज्ञान की ईंट पर ईंट जोड़ते जा रहे हों।
हाँ हाँ, वो सीधी सरल कहानी, जबकि कून का नजरिया वो थोड़ा अलग है, ज्यादा दिलचस्प, शायद थोड़ा पेचीदा भी।
वो कहते हैं कि ज्ञान असल में उछल कर आगे बढ़ता है, बड़े बदलावों के साथ।
हाँ बिल्कुल, बड़े उथल पुथल वाले दौर आते हैं, और वो मशहूर जुमला है ना, पैराडाइम शिफ्ट।
अरे हाँ, पैराडाइम शिफ्ट आजकल तो हर कोई इस्तेमाल करता है, बिजनेस में, पर्सनल ग्रोथ में, सब जगह।
जी, वो इसी किताब की देन है। तो ये किताब हमें बड़े बदलावों को समझने का एक नया चश्मा देती है एक तरह से।
तो चलिए आज इसी की गहराई में उतरते हैं, समझते हैं कि भाई विज्ञान असल में बदलता कैसे है, ये पैराडाइम बला क्या है, और ये सारे आइडियाज हमारे लिए आज क्यों जरूरी हैं।
जरूर, लेकिन पहले जरा उस शख्स के बारे में बात कर लें जिनकी एक क्रांतिकारी सोच थी, थॉमस कून के बारे में।
हाँ बिल्कुल, बताइए उनके बारे में।
तो थॉमस कून 1922 से 1996 तक, उनका सफर भी जैसा आपने कहा उनकी सोच की तरह ही थोड़ा हटके था। वो असल में एक फिजिसिस्ट थे।
अच्छा, भौतिक विज्ञानी।
जी हाँ, हार्वर्ड से थियोरेटिकल फिजिक्स में पीएचडी की थी उन्होंने। तो मतलब वो साइंस की दुनिया को अंदर से समझते थे, कोई बाहरी आलोचक नहीं थे।
फिर वो इतिहासकार और दार्शनिक कैसे बन गए, ये तो बड़ा बदलाव है।
हाँ, एक खास अनुभव ने उनकी सोच बदल दी। हुआ ये कि वो ह्यूमैनिटीज के छात्रों को विज्ञान पढ़ा रहे थे, और उसी दौरान उन्होंने अरस्तु की फिजिक्स पढ़ी, और पढ़ते पढ़ते उन्हें अचानक ये एहसास हुआ कि हम अरस्तु को आज की न्यूटन वाली फिजिक्स के चश्मे से देखकर गलत नहीं कह सकते।
दिलचस्प बात है, मतलब
ये कि अरस्तु की दुनिया ही अलग थी, उनके सोचने का फ्रेमवर्क, उनका पैराडाइम ही अलग था। उसे समझने के लिए उसी दुनिया में जाना जरूरी था।
बस
वहीं से बत्ती जली।
हाँ,
वहीं से उनके दिमाग में ये क्रांतिकारी आइडिया आया कि शायद वैज्ञानिक ज्ञान हमेशा एक ही दिशा में जुड़ते हुए आगे नहीं बढ़ता, शायद ये अलग अलग दुनियाओं या ढांचों में काम करता है।
तो ये जो उनका दोहरा नजरिया था, एक वैज्ञानिक का भी और एक इतिहासकार का भी, इसी ने उन्हें ये नई दृष्टि दी।
बिल्कुल, इसी वजह से वो विज्ञान की प्रगति की जो पारंपरिक कहानी थी उसे चुनौती दे पाए। अंदर का आदमी जो सिस्टम को समझता था वही बता रहा था कि देखो, चीजें असल में ऐसे काम करती हैं।
तो आते हैं किताब के मूल आइडिया पर। अगर विज्ञान सीधी रेखा में नहीं बढ़ता है तो फिर कून के हिसाब से कैसे बढ़ता है?
देखिए, कून का जो मेन आर्ग्यूमेंट है वो ये है कि विज्ञान एक चक्रीय पैटर्न में, साइकिल में आगे बढ़ता है।
साइकिल में?
कैसे? ज्यादातर समय जिसे वो कहते हैं सामान्य विज्ञान या नॉर्मल साइंस, वो चलता रहता है। ये एक तरह का, कह लीजिए, शांति का दौर होता है।
ठीक है।
इस दौर में एक स्थापित ढांचा, एक फ्रेमवर्क होता है जिसे कून ने नाम दिया पैराडाइम, और यही पैराडाइम उस वक्त उस फील्ड पर हावी होता है।
ये पैराडाइम शब्द फिर आ गया, ये बहुत जरूरी लगता है। थोड़ा और खोलेंगे इसे, ये क्या सिर्फ एक थ्योरी है?
नहीं, सिर्फ थ्योरी से कहीं ज्यादा है। पैराडाइम का मतलब है किसी खास वक्त में किसी साइंटिफिक कम्युनिटी की जो साझा मान्यताएं हैं, जो सिद्धांत वो मानते हैं, जिस तरह के प्रयोग वो करते हैं, यहां तक कि जो सवाल वो पूछते हैं या जो औजार इस्तेमाल करते हैं, उन सब का पूरा सेट।
अच्छा, तो ये एक तरह का नक्शा है या दुनिया देखने का चश्मा?
बिल्कुल सही, एक विश्व दृष्टि कह सकते हैं। ये तय करता है कि वैज्ञानिक क्या देखेंगे, कैसे देखेंगे, और जो देखा है उसका मतलब क्या निकालेंगे। जैसे न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, वो एक जबरदस्त पैराडाइम था जिसने सदियों तक फिजिक्स को रास्ता दिखाया।
समझ गई, तो ये जो सामान्य विज्ञान है ये इसी पैराडाइम के अंदर काम करता है। इसमें वैज्ञानिक करते क्या हैं?
हाँ, नॉर्मल साइंस में वैज्ञानिक कोई बहुत बड़ी नई क्रांतिकारी खोज करने की कोशिश नहीं कर रहे होते।
तो फिर
उनका काम होता है उस मौजूदा पैराडाइम को और मजबूत करना, उसे और साफ करना, उसका दायरा बढ़ाना। कून इसकी तुलना करते हैं पहेली सुलझाने से, पजल सॉल्विंग।
पहेली सुलझाना, जैसे जिग्सॉ पजल?
हाँ, कुछ वैसा ही। जैसे हमें पता होता है कि पजल का हल मौजूद है, बस उसे ढूंढना है। वैसे ही नॉर्मल साइंस में ये मान लिया जाता है कि जो भी सवाल हैं उनके जवाब पैराडाइम के अंदर ही मिलेंगे।
और अगर कोई वैज्ञानिक जवाब नहीं ढूंढ पाया
तो ये माना जाता है कि ये उस वैज्ञानिक की कमी है, पैराडाइम की नहीं। पैराडाइम पर सवाल नहीं उठाया जाता।
अरे ये तो थोड़ा मतलब डॉगमैटिक रूढ़िवादी सा नहीं लग रहा? क्या इससे तरक्की रुकती नहीं?
यही तो कून की सबसे दिलचस्प बातों में से एक है। वो कहते हैं कि ये रूढ़िवाद, ये एक तरह की जो हठ धर्मिता है, वो असल में जरूरी है।
जरूरी? कैसे?
क्योंकि जब वैज्ञानिक इतने ध्यान से, इतने फोकस के साथ पैराडाइम के अंदर छोटी छोटी पहेलियां सुलझा रहे होते हैं, तभी उनका ध्यान उन बहुत बारीक चीजों पर जाता है जो ठीक से फिट नहीं बैठ रही।
अच्छा, जो उस पजल में फिट नहीं हो रहे पीस।
हाँ, वही विसंगतियां, एनोमलीज। ये गहन फोकस ही उन विसंगतियों, उन दरारों को उजागर करता है जो आगे चलकर पूरे ढांचे को हिला सकती हैं।
तो ये विसंगतियां यानी एनोमलीज ये क्या होती हैं? ठीक ठीक
विसंगतियां मतलब वो नतीजे, वो ऑब्जर्वेशंस जिन्हें मौजूदा पैराडाइम समझा नहीं पाता। वो उस नक्शे पर ऐसी जगहें हैं जो नक्शे से मेल नहीं खाती। शुरू शुरू में तो कोशिश होती है कि इन्हें नजरअंदाज कर दिया जाए या फिर मौजूदा पैराडाइम में ही एक तरह से फिट करने की जुगाड़ लगाई जाए।
जैसे आपने ऑक्सीजन वाली खोज का उदाहरण दिया था पहले।
बिल्कुल सही। प्रीस्टली और शीले, उन्होंने एक नई गैस खोजी, लेकिन उस वक्त फ्लोजिस्टन वाला पैराडाइम चल रहा था, तो उन्होंने उसे क्या कहा? डीफ्लोजिस्टिकेटेड हवा।
मतलब पुराने डब्बे में फिट करने की कोशिश की।
हाँ, लेकिन फिर आए लैवोजिए, उन्होंने उसे बिल्कुल नए नजरिए से देखा। भाई, ये तो एक नया एलिमेंट है, ऑक्सीजन, और बस यहीं से केमिस्ट्री में क्रांति आ गई। तो देखिए, खोज सिर्फ कुछ पा लेना नहीं है, उसे नए तरीके से समझना भी है।
ठीक है, तो जब ऐसी विसंगतियां, ये फिट ना होने वाले पीस बढ़ते जाते हैं और उन्हें नजरअंदाज करना मुश्किल हो जाता है, तब क्या होता है?
तब उस फील्ड में एक संकट की स्थिति पैदा होती है, क्राइसिस। वैज्ञानिकों का जो भरोसा होता है मौजूदा पैराडाइम पर, वो डगमगाने लगता है।
जैसे लगने लगे कि भाई ये नक्शा अब ठीक से काम नहीं कर रहा।
एग्जैक्टली, नॉर्मल साइंस के जो नियम थे वो ढीले पड़ने लगते हैं, ज्यादा अटकलें लगने लगती हैं, जो बुनियादी मान्यताएं थीं उन पर सवाल उठने लगते हैं, माहौल थोड़ा अनिश्चित हो जाता है।
और फिर इस संकट का हल कैसे निकलता है?
संकट का हल निकलता है एक वैज्ञानिक क्रांति से, साइंटिफिक रेवोल्यूशन। ये वो दौर होता है जब कोई नया क्रांतिकारी आइडिया या थ्योरी सामने आती है,
जो उन विसंगतियों को समझा पाती है।
हाँ, जो उन पहेलियों को सुलझा पाती है जिन्हें पुराना पैराडाइम नहीं सुलझा पा रहा था। और फिर धीरे धीरे वैज्ञानिक समुदाय इस नए आइडिया को, इस नए पैराडाइम को अपनाने लगता है, और पुराना वाला पीछे छूट जाता है।
पर यह बदलाव आसान तो नहीं होता होगा? लोग अपनी पुरानी सोच आसानी से कहां छोड़ते हैं?
बिल्कुल नहीं। कून इसकी तुलना करते हैं राजनीतिक क्रांति से। जैसे वहां पुराने और नए सिस्टम के समर्थकों में टकराव होता है, वैसा ही यहां भी होता है। पुराने पैराडाइम के समर्थक अपनी बात पे अड़े रहते हैं, नए वाले अपनी बात पर।
और यहीं पर वो अतुलनीयता वाली बात आती है, इनकमेंसरेबिलिटी।
जी हाँ, ये कून का एक और बहुत अहम और हाँ थोड़ा विवादास्पद विचार भी है। वो कहते हैं कि दो प्रतिस्पर्धी पैराडाइम इतने अलग हो सकते हैं, उनकी भाषा, उनके मानक, उनके सवाल पूछने का तरीका, सब कुछ इतना अलग होता है कि उनकी सीधी सीधी तुलना करना भी मुश्किल है।
मतलब वो एक दूसरे की बात समझ ही नहीं सकते।
काफी हद तक। कून कहते हैं कि वो मानो अलग अलग दुनियाओं में काम कर रहे होते हैं।
अलग अलग दुनियाओं में? ये थोड़ा गहरा लग रहा है, इसका क्या मतलब हुआ?
कून ने इसके लिए गेस्टाल्ट स्विच का उदाहरण दिया। जैसे वो तस्वीर होती है ना, जो कभी बत्तख दिखती है, कभी खरगोश।
हाँ हाँ, देखी है।
डेटा तो वही है, तस्वीर वही है, लेकिन उसे देखने का नजरिया पूरी तरह बदल जाता है एक ही झटके में। कून कहते हैं कि क्रांति के बाद ऐसा ही होता है। अरस्तु को जो झूलता हुआ पत्थर दिखता था, वो अपने प्राकृतिक स्थान की ओर जा रहा था। गैलीलियो को वही चीज एक पेंडुलम दिखी, जिसके अपने नियम थे। चीजें वही रहीं, पर उनको देखने और समझने का पूरा फ्रेमवर्क बदल गया। वैज्ञानिक सचमुच दुनिया को अलग तरह से देखने लगते हैं।
बाप रे, तो अगर पैराडाइम्स इतने अलग हैं, अतुलनीय हैं, तो फिर वैज्ञानिक चुनते कैसे हैं कि कौन सा सही है, अगर वो तर्क और सबूत पर भी सहमत नहीं हो सकते, क्योंकि सबूत का मतलब ही दोनों के लिए अलग है?
बहुत जरूरी सवाल है ये, और कून का जवाब थोड़ा चौंकाने वाला है। वो कहते हैं कि ये चुनाव सिर्फ शुद्ध लॉजिक या प्रूफ पर आधारित नहीं होता।
तो फिर किस पर?
इसमें अनुनय यानी पर्सुएजन का बड़ा रोल होता है। नया पैराडाइम शायद ज्यादा एलिगेंट लगे, ज्यादा सुंदर लगे, या वो भविष्य में ज्यादा समस्याएं सुलझाने का वादा करता दिखे, या हो सकता है वो युवा वैज्ञानिकों को ज्यादा अपील करे, जिनकी सोच अभी पुरानी मान्यताओं में बंधी नहीं है।
अच्छा,
और कून ये भी कहते हैं कि कई बार तो क्रांति पूरी तभी होती है जब पुरानी पीढ़ी के वैज्ञानिक, जो पुराने पैराडाइम से चिपके हुए थे, वो रिटायर हो जाते हैं, गुजर जाते हैं, और नई पीढ़ी आती है जो शुरू से ही नए पैराडाइम में ट्रेनिंग लेती है।
तो ये तो विज्ञान के मानवीय और सामाजिक पहलू को बहुत ज्यादा उजागर कर रहा है।
बिल्कुल, ये दिखाता है कि विज्ञान सिर्फ तथ्यों और आंकड़ों का खेल नहीं है, ये इंसानों द्वारा, समुदायों द्वारा किया जाने वाला काम है।
तो फिर क्या इसका मतलब ये हुआ कि विज्ञान असल में प्रगति नहीं करता? अगर हम बस एक पैराडाइम से दूसरे पे कूद रहे हैं, तो क्या हम सच के ज्यादा करीब जा रहे हैं या बस अब घूम रहे हैं?
कून यहां भी हमारी आम समझ को चुनौती देते हैं, वो प्रगति को रीडिफाइन करते हैं। वो कहते हैं कि विज्ञान किसी अंतिम, पहले से तय सच की तरफ नहीं बढ़ रहा है, ऐसा कोई डेस्टिनेशन नहीं है,
तो फिर
बल्कि वो पिछले कमजोर या कम समस्याओं को सुलझा पाने वाले पैराडाइम से दूर जा रहा है। इट्स अ मूवमेंट अवे फ्रॉम, नॉट टुवर्ड्स।
ये कुछ कुछ डार्विन के विकासवाद जैसा लग रहा है। कोई तयशुदा मंजिल नहीं, बस बदलते माहौल के हिसाब से बेहतर होते जाना।
बिल्कुल सही पकड़ा आपने, कोई तयशुदा लक्ष्य नहीं है, लेकिन समय के साथ विज्ञान की जो पहेलियां सुलझाने की क्षमता है वो बेहतर होती जाती है, ज्यादा परिष्कृत होती जाती है। हर नया पैराडाइम नई और ज्यादा जटिल पहेलियां सामने लाता है, और फिर से सामान्य विज्ञान का दौर शुरू होता है उन पहेलियों को सुलझाने के लिए।
ये तो सोचने का बिल्कुल ही नया तरीका है। लेकिन एक बात समझ नहीं आई, अगर ये क्रांतियां इतनी बड़ी होती हैं, तो हमें इतिहास में इतनी साफ साफ क्यों नहीं दिखती? हमें तो स्कूल में पढ़ाया जाता है कि विज्ञान बस डिस्कवरी के बाद डिस्कवरी करता गया।
हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है, और कून इसका भी जवाब देते हैं। वजह है साइंस की टेक्स्ट बुक्स।
टेक्स्ट बुक्स कैसे?
कून कहते हैं कि हर क्रांति के बाद इतिहास को फिर से लिखा जाता है। जो नई टेक्स्ट बुक्स आती हैं, वो कहानी को ऐसे पेश करती हैं जैसे मौजूदा पैराडाइम तक पहुंचना ही एकमात्र सीधा लॉजिकल रास्ता था।
अच्छा,
वो पुराने पैराडाइम को, उसको लेकर हुए संघर्षों को, जो बहसें हुई, जो आइडियाज खारिज हुए, उन सबको या तो बहुत कम करके दिखाती हैं या पूरी तरह मिटा देती हैं,
ताकि ऐसा लगे कि सब कुछ बड़ा स्मूथ था।
हाँ, इससे एक तरह की ऐतिहासिक विस्मृति पैदा होती है, हिस्टोरिकल एमनेशिया। हमें लगता है कि विज्ञान हमेशा से ऐसा ही था जैसा आज है।
समझ गई। तो कुल मिलाकर कून हमें विज्ञान को एक ज्यादा, क्या कहूँ, ज्यादा असलियत के करीब देखने को कह रहे हैं, एक ज्यादा गतिशील, मानवीय और हाँ, उथल पुथल भरी प्रक्रिया के रूप में।
बिल्कुल, ये सिर्फ लैब में होने वाला शांत तार्किक काम नहीं है, इसमें विचारों का टकराव है, समुदायों का बदलना है, दुनिया को देखने के नजरिए का बदलना शामिल है।
और आपने शुरू में कहा था कि ये विचार सिर्फ विज्ञान तक ही सीमित नहीं है।
जी हाँ, कून का ये जो पूरा फ्रेमवर्क है, पैराडाइम, नॉर्मल साइंस, विसंगति, संकट, क्रांति, ये हमें जिंदगी के कई और एरिया में होने वाले बड़े बदलावों को समझने में मदद करता है।
जैसे कि?
कुछ उदाहरण देंगी?
जरूर। सोचिए बिजनेस और इनोवेशन के बारे में। हर कंपनी का अपना एक पैराडाइम होता है ना?
हाँ,
उनका बिजनेस मॉडल, मार्केट को देखने का तरीका,
बिल्कुल।
उनकी जो बुनियादी मान्यताएं होती हैं कस्टमर्स और मार्केट के बारे में। अब सोचिए ब्लॉकबस्टर वीडियो रेंटल का। वो अपने रेंटल स्टोर वाले पैराडाइम में फंसे रह गए और नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग का नया पैराडाइम लेकर आ गया।
एग्जैक्टली। और देखिए क्या हुआ, तो कंपनियों को ना सिर्फ अपने मौजूदा पैराडाइम में अच्छा काम करना होता है, नॉर्मल साइंस, बल्कि उन विसंगतियों पर भी नजर रखनी होती हैं, जैसे कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई या कस्टमर का बिहेवियर बदल रहा है। ये विसंगतियां संकेत हो सकती हैं कि भाई अब पैराडाइम बदलने का वक्त आ गया है।
भारत में भी तो हमने देखा है, कई स्टार्टअप्स ने पुराने इंडस्ट्रीज के काम करने के तरीके को, उनके पैराडाइम को पूरी तरह बदल दिया है।
बिल्कुल, ये हर जगह होता है।
और ये बात तो शायद व्यक्तिगत स्तर पर भी लागू होती होगी, हमारे अपने विश्वास, हमारी वैल्यूज।
हाँ हाँ, बहुत ज्यादा। हमारी जो अपनी विश्व दृष्टि है, दुनिया को देखने का हमारा नजरिया, वो भी तो एक तरह का पर्सनल पैराडाइम है।
सही कहा।
और कभी कभी जिंदगी में कोई बड़ी घटना होती है, कोई बड़ी सफलता मिल गई या कोई बड़ी असफल का कोई गहरा अनुभव, वो एक विसंगति की तरह काम कर सकता है, जिसे हमारा मौजूदा नजरिया, हमारा पैराडाइम समझ नहीं पाता,
और तब एक व्यक्तिगत संकट पैदा हो सकता है।
हाँ, और फिर शायद हमारे सोचने के तरीके में एक बड़ा पैराडाइम शिफ्ट आए, हम खुद को और दुनिया को समझने का अपना तरीका ही बदल दें। ये भी समझाता है कि क्यों हमारे जो गहरे बैठे विश्वास हैं, उन्हें बदलना इतना मुश्किल होता है,
क्योंकि वो सिर्फ एक राय बदलना नहीं है,
वो पूरी दुनिया बदलना जैसा है।
और सामाजिक या राजनीतिक बदलावों को भी इस नजरिए से देख सकते हैं, अलग अलग विचारधाराएं।
हाँ बिल्कुल, अलग अलग राजनीतिक विचारधाराएं जैसे कैपिटलिज्म या सोशलिज्म, वो भी सामाजिक पैराडाइम की तरह काम करती हैं। उनके अपने मूल्य होते हैं, अपनी मान्यताएं, अपने सवाल।
इसीलिए शायद अलग अलग पक्ष के लोग अक्सर एक दूसरे की बात समझ ही नहीं पाते।
हाँ, ऐसा लगता है जैसे वो एक दूसरे से आगे बात कर रहे हैं, क्योंकि वो अलग अलग मौलिक मान्यताओं के साथ काम कर रहे होते हैं। उनके विचार अतुलनीय हो जाते हैं, इनकमेंशरेबल। बड़े सामाजिक आंदोलन जैसे सिविल राइट्स मूवमेंट, वो भी समाज की सोच में एक तरह के पैराडाइम शिफ्ट होते हैं।
शिक्षा के क्षेत्र में भी इसका कोई मतलब है?
बहुत गहरा मतलब है। ये इस विचार को चुनौती देता है कि सीखना बस फैक्ट्स को ट्रांसफर करना है। असली सीखना, खासकर एडवांस लेवल पर, किसी विषय के पैराडाइम में दीक्षित होना है। मतलब दुनिया को एक फिजिसिस्ट की तरह, या एक हिस्टोरियन की तरह, या एक आर्टिस्ट की तरह देखना सीखना।
और ये हमें विनम्र भी बनाता है।
हाँ, क्योंकि ये याद दिलाता है कि जो आज का सच है वो कल का पुराना पैराडाइम हो सकता है। ये हमें अपनी मान्यताओं पर सवाल पूछने और उन विसंगतियों को पहचानने के लिए उकसाता है जिन्हें हमारा मौजूदा फ्रेमवर्क समझा नहीं पा रहा।
तो अगर हम कून के इन विचारों से कुछ मुख्य बातें निकालें तो वो क्या होंगी?
मेरे ख्याल से पहला और सबसे जरूरी सबक तो यही है कि ज्ञान कोई बनी बनाई इमारत नहीं है। ये एक गतिशील चीज है, लगातार विकसित होती है, और ये एक गहरी मानवीय प्रक्रिया है
जिसमें इंसानी भावनाएं, समुदाय, ये सब शामिल है।
बिल्कुल। दूसरा कि प्रगति हमेशा सीधी रेखा में नहीं होती। कभी कभी आगे बढ़ने के लिए आपको पुरानी सोच, पुराने ढांचे को पूरी तरह तोड़ना पड़ता है और एक नई नींव रखनी पड़ती है। ये क्रांतियां जरूरी हैं, ये सिस्टम का हिस्सा है, कोई गड़बड़ी नहीं।
और तीसरा?
तीसरा ये कि हमारे सोचने के ढांचे, हमारे पैराडाइम बहुत ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। वो ना सिर्फ ये तय करते हैं कि हम क्या सोचते हैं, बल्कि ये भी कि हम क्या देख पाते हैं और क्या नहीं देख पाते।
अपनी ही दुनिया बना लेते हैं।
हाँ, और अपने पैराडाइम को पहचानना, उस पर सवाल उठाना, शायद यही असली क्रिटिकल थिंकिंग की शुरुआत है। बौद्धिक लचीलापन यहीं से आता है।
कुहुन की किताब यही सिखाती है, सवाल पूछो, बनी बनाई मान्यताओं को चुनौती दो और समझो कि ज्ञान की यात्रा कभी खत्म नहीं होती।
ये हमेशा विकसित होती है, नए पैराडाइम बनते हैं, पुराने टूटते हैं, और इसी उथल पुथल से, इसी क्रांति से प्रगति होती है। असल में प्रगति के लिए अक्सर समस्या के फ्रेम को ही बदलना पड़ता है।
ये वाकई सोचने पर मजबूर करने वाली बात है। विज्ञान, जिसे हम इतना ऑब्जेक्टिव मानते हैं, उसके पीछे भी इतनी कहानी, इतना ड्रामा, इतना मानवीय पहलू है।
हाँ, और शायद यही बात इस किताब को इतना खास और इतना असरदार बनाती है। ये विज्ञान को ज्यादा मानवीय, ज्यादा दिलचस्प और शायद ज्यादा सच्चा दिखाती है।
ये याद दिलाती है कि बड़े बदलाव अक्सर नियमों को तोड़ने से ही आते हैं।
बिल्कुल।
तो आज की हमारी चर्चा का सार यही है कि थॉमस कून ने हमें ज्ञान की प्रगति को और असल में किसी भी क्षेत्र में होने वाले बड़े बदलावों को देखने का एक बिल्कुल नया क्रांतिकारी नजरिया दिया।
हाँ, पैराडाइम, नॉर्मल साइंस, पैराडाइम शिफ्ट, ये शब्द अब हमारी वोकैबुलरी का हिस्सा बन गए हैं जो हमें बदलाव को समझने में मदद करते हैं।
और ये हमें हमेशा अपने विश्वासों पर सवाल उठाते रहने और नए विचारों के लिए दिमाग खुला रखने की प्रेरणा भी देते हैं।
सही कहा।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।